रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
पांडवलो 13वें वर्ष के अज्ञातवास में विराट नगर में राजा विराट के आश्रय में रहने लगे। नकुल ग्रंथि के नाम में था, वो घोड़ों का काम करता था और सहदेव था, वो सबसे पहले गया था। वो तंतीपाल नाम से गौओं की रक्षा करता, गौ पालन करता और अर्जुन ब्रिहन्नला के रूप में संगीत विद्या सिखाता, नाचता गाता। भीमसेन बल्लभ के नाम से रहे, रसोई का काम करते और युधिष्ठिर महाराज कंक भट्ट के नाम से वहां पर पासा खेलने का काम करते। द्रौपदी वहां शैलेंद्री रही। लोग कह सकते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जब सत्य बोलने वाले थे तो यहां अपना नाम क्यों बदला, और ये भी कैसे क्यों कहा कि मैं युधिष्ठिर के पास में पासे खेलता था, ये तो झूठ है। जिस झूठ से किसी का भी नुकसान नहीं होता हो वो झूठ झूठ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कल आपने सुना था कि धर्मराज ने स्वयं ने आकर परीक्षा ली तो उन्होंने नाम बता दिया, तुम ये नाम रखना, तुम ये नाम रखना, तुम ये नाम रखना। जो धर्मराज ने अर्थात बाप ने नाम रख दिया तो रख दिया, उनको अधिकार है। इस कारण से भी युधिष्ठिर महाराज पर झूठ का आरोप नहीं लग सकता। चौथी बात है, इनको अज्ञातवास निकालना, अज्ञातवास रहेगा ही, ऐसे ही धर्म का पालन कर रहे हैं ये, तो झूठ तो अधर्म होता है, ये झूठ झूठ नहीं है, ये अज्ञातवास का एक तरीका है। अपने को छिपाने का एक तरीका है। जैसे सत्य का मर्म होता है ऐसे झूठ का भी मर्म होता है। आराम से रहने लगे वहां। जनमेजय ने पूछा कि हे वेशमपायन जी, इस प्रकार जब पांडवगण विराट नगर में छिपकर रहने लगे उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, पांडवों ने वहां छिपे रहकर जो राजा विराट को प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पांडवों को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सदा शंका बनी रहती थी, इसलिए वे द्रौपदी की देखरेख रखते हुए बहुत छिपकर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हों। विराट के यहां आने पर जब 3 महीने बीत गए और 4th महीने का वहां शुभारंभ हुआ, उस समय उस मत्स्य देश में ब्रह्म महोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसमें सभी दिशाओं से हजारों पहलवान जुटे, सब एक से एक बढ़कर पहलवान थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे। उन पहलवानों को खूब पुरस्कार देते, इनाम देते। उनके कंधे, कमर और ग्रीवा सिंह के समान थे, शरीर का रंग गोरा था। राजा के निकट उन्होंने अनेकों बार अखाड़ों में विजय प्राप्त की थी। उन पहलवानों में भी एक सबसे बड़ा पहलवान था, उसका नाम था जीमूत। उसने अखाड़े में उतरकर एक एक करके सबको लड़ने के लिए बुलाया, परंतु उसे कूदते और पैंतरे बदलते देख किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गए। तब जाने क्यों मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये बल्लभ को उसके साथ भिड़ने की आज्ञा दी, तू भिड़। भीमसेन ने कहा, महाराज मैं तो भोजन बनाता हूं। राजा ने कहा, बल्लभ आज पहलवानों में हमारे नगर की शान रखनी है, तो राजा का सम्मान रखने के लिए भीमसेन सिंह के समान धीमी धीमी चाल से चलकर रंगभूमि में प्रवेश किया और जब वहां जाकर वे अपना लंगोटा वगैरह कसने लगे तो सब जनता ने वहां तालियां बजाकर हर्षद ध्वनि की। भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर वृत्रासुर के समान विख्यात पराक्रमी जीमूत को ललकारा, आओ सब पहलवानों को डराने वाले हो, इस बल्लभ रसोइये से कुश्ती लड़ो। जीमूत ने कहा, रसोइया मेरे से युद्ध करेगा, पहलवानी करेगा? भीमसेन ने कहा, हम तैयार हैं। अब दोनों में लड़ने का बड़ा उत्साह, दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले, दोनों के ही शरीर 60 वर्ष के मत वाले हाथी के समान ऊंचे और हृष्टपुष्ट। पहले उन दोनों ने एक दूसरे से बाहें मिलाई, फिर वे परस्पर जय की इच्छा से खूब उत्साह से युद्ध करने लगे, जैसे पर्वत और वज्र के टकराने से घोर शब्द होता है, उसी प्रकार आपस में मुक्कों का आघात करने से भयानक चटाचट शब्द का गुंजन हुआ। एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तो दूसरा उसके छुड़ा लेता। दोनों अपने हाथों से मुट्ठी बांध परस्पर खूब प्रहार करने लगे। दोनों के शरीर से गुथ जाते, फिर धक्का देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से कुलांच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता। दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से छाती पर चोट मारते। कभी एक दूसरे का कंधा उठा लेता, कोई उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता। इससे बड़े जोर का शब्द होता। कभी कभी परस्पर वज्रपात के समान शब्द करने वाली चाटों की भी मार होती, चाटे थप्पड़। कभी हाथ की उंगलियां फैलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते, कभी नखों से बकोटते, कभी पैरों से उछालकर एक दूसरे को गिरा देते, कभी घुटने और कभी सिर से टक्कर मारते, जिससे बिजली गिरने के समान शब्द होता। कभी प्रतिपक्षी की गोद में घसीट लाते, कभी खेल में उसके सामने खींच लाते, कभी दाएं बाएं पैंतरे बदलते, कभी एक बार की पीछे ठकेल कर पटक देते। इस प्रकार दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से प्रहार करते देख सब लोग आश्चर्य करने लगे। केवल बाहुबल, शरीर बल और प्राण बल से ही उन वीरों का भयंकर युद्ध होता रहा, किसी ने भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तदनंतर जैसे सिंह हाथी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने उछलकर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया, ऊपर उठा लिया और उसे घुमाना चालू किया। उनका ये पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्य देश के दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने उसे 100 बार घुमाया, जिससे वो ढीला हो गया, बेहोश हो गया और उसके बाद उसको जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, उसका कचूमर निकल गया। इस प्रकार भीम के हाथ से जगत प्रसिद्ध पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को बड़ी खुशी हुई। इस तरह अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार मार कर भीमसेन राजा विराट के स्नेह भाजन बन गए। जब उन्हें युद्ध करने के लिए अपने समान कोई पुरुष नहीं मिला, तो वे हाथियों और सिंहों से भी लड़ा करते थे भीमसेन। और राजा कहते, शाबाश, तुमने हमारी रसोई की लाज रख दी। इधर अर्जुन भी अपने नाचने और गाने की कला से राजा के अंतःपुर की स्त्रियों को खूब प्रसन्न रखते। नकुल भी अपने सिखलाए हुए वेग से चलने वाले घोड़ों की तरह तरह की चाल दिखाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करने लगे। सहदेव के सिखाए हुए बैलों को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता था। इस प्रकार सभी पांडव वहां छिपे रहकर राजा विराट का कार्य करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों के मत्स्य नरेश की राजधानी में रहते हुए 10 महीने बीत गए। यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्ट से गिन गिन कर समय निकालती थी। 10 महीने हो गए, 2 महीने और बाकी। जब वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया, उस समय की बात है, एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक की दृष्टि उस द्रौपदी पर पड़ी, जो उस राजमहल में देव कन्या के समान विचर रही थी। यह कीचक राजा विराट का साला था। वह सैरेंद्री को देखते ही उस पर मोहित हो गया और उसे चाहने लगा। कामना की आग में जलता हुआ कीचक अपने बहिन रानी सुदिशना के पास आया और हंस हंस कर कहने लगा, सुदेश ने, यह सुंदरी जो मुझे अपने रूप से मोहित कर रही है, पहले तो कभी इस महल में नहीं देखी गई। देवांगना के समान ये मन को मोह ले रही है। बहन, बताओ ये कौन है, किसकी स्त्री है और यहां कहां से आई है? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका है। अब इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई औषध नहीं है जो मेरे हृदय को शांति दे सके। आहो बड़े आश्चर्य की बात है, ये तुम्हारे यहां दासी का काम कर रही है। ये कार्य कदापि इसके रूप को देखते हुए योग्य नहीं है। मैं तो इसे अपनी तथा अपने सर्वस्व की स्वामिनी बनाना चाहता हूं। इस प्रकार रानी सुदेशना से कहकर कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर बोला, कल्याणी तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और कहां से आई हो, ये सब बातें मुझे बताओ। तुम्हारा ये सुंदर रूप, तुम्हारी ये दिव्य छवि, तुम्हारी ये सुकुमारता संसार में कहीं नहीं देखी जा सकती, और तुम्हारा उज्ज्वल मुख तो अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है। तुम जैसी मनोहरिणी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हे सुमुखी, बताओ तो तुम कमलों में वास करने वाली लक्ष्मी हो या कोई साकार विभूति हो। लज्जा, श्री, कीर्ति और कांति, इन देवियों में से तुम कौन हो। यह स्थान तुम्हारे रहने लायक नहीं है, तुम सुख भोगने की योग्य हो और यहां कष्ट उठा रही हो। मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख भोग समर्पण करना चाहता हूं, स्वीकार करो। इसके बिना तुम्हारा ये रूप और सौंदर्य व्यर्थ चला जा रहा है। सुंदरी, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं अपनी पहली स्त्री को त्याग दूं। यदि तुम मुझे आज्ञा दे हो तो मैं उन्हें तुम्हारी दासी बनाकर रख दूं, और यदि तुम्हारी ये भी आज्ञा हो तो मैं स्वयं भी सेवक के समान तुम्हारे अधीन हो जाऊं। द्रौपदी ने अपनी नजरों को कठोर करते हुए कहा, मैं पराई स्त्री हूं, मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है। जगत के सभी प्राणी अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं, तुम भी धर्म का विचार करके ऐसा ही करो। दूसरों की स्त्री की और कभी किसी प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, उन स्त्रियों पर मन नहीं ललचाना चाहिए। सत्पुरुषों का यह नियम है, वे अनुचित कार्यों को सर्वथा त्याग दिया करते हैं। आपकी वाणी से हमें बहुत कष्ट होता है। शैलेन्द्र की ये बात सुनकर कीचक बोला, सुंदरी तुम तो मेरी प्रार्थना को ठुकरा रही हो। प्रार्थना ठुकराओ मत, मैं तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट पा रहा हूं। मुझे अस्वीकार करके तुम्हें भी कोई बड़ा लाभ नहीं होगा, बड़ा पछतावा होगा। इस संपूर्ण राज्य पर मेरा शासन है, मैं किसी को भी यहां उखाड़ने, उजाड़ने, बसाने की शक्ति रखता हूं। शारीरिक बल में मेरे समान पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं अपना सारा राज्य तुम पर निछावर कर रहा हूं। पटरानी बनो, मेरे साथ सर्वोत्तम भोग भोगो, तुम्हें लाज क्यों आती है। शैलेन्द्र बोली, सूत पुत्र, तू इस प्रकार मोह के फंदे में पड़कर अपनी जान मत गंवा देना। याद रख, पांच गंधर्व मेरे पति हैं, बड़े भयानक हैं, सदा मेरी रक्षा करते हैं। इस गंदे विचार को त्याग दे, नहीं तो मेरे पति कुपित होकर तुम्हें मार डालेंगे। क्यों तुम अपना सर्वस्व नाश करने पर तुला हुआ है। कीचक, मुझ पर कुदृष्टि डालकर तू आकाश, पाताल, समुद्र में भाग करके भी नहीं छिप सकता। मेरे आकाशचारी पतियों के हाथ से जीवित बचाना, तुम्हारे जीवन बचाना तुम्हारे लिए असंभव है। जैसे कोई रोगी कष्ट पाकर मौत को बुलाए, उसी प्रकार तू भी काल रात्रि के समान मुझसे ऐसी क्यों याचना कर रहा है। राजकुमारी द्रौपदी के ठुकराने पर कीचक काम संतप्त हो सुदेशना के पास जाकर बोला, बहन, जिस उपाय से भी शैलेंद्री मुझे स्वीकार करे सो करो, नहीं तो मैं इसके मुंह में प्राण दे दूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर रानी ने कहा, भैया मैं शैलेंद्री को एकांत में तुम्हारे पास भेज दूंगी, वहां यदि संभव हो तो उसे अपने इच्छानुसार समझा बुझाकर प्रसन्न कर लेना। अपनी बहन की बात मानकर कीचक वहां से चला गया और किसी पर्व के दिन अपने घर पर उसने खाने पीने की बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवाई। तत्पश्चात उसने अपनी बहन सुदेशना को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदेशना ने शैलेंद्री को बुलाकर कहा, कल्याणी मुझे बड़े जोर से प्यास लग रही है, तुम कीचक के घर जाओ और वहां से पीने योग्य रस ले आओ। शैलेंद्री बोली, रानी मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, आप तो जानती हैं वो कितना निर्लज्ज है, मैं आपके यहां व्यभिचारिणी होकर नहीं रह रही हूं। जिस समय मेरा इस महल में प्रवेश हुआ था उस समय की प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी ना, फिर मुझे आप क्यों भेज रही हो? मूर्ख कीचक काम से पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान करेगा। आपके यहां और भी तो बहुत सी दासियां हैं, उन्हीं में से किसी को भेज दीजिए, मैं तो अपमान के डर से वहां नहीं जाना चाहती। सुदेशना ने कहा, शैलेंद्री मैं तुम्हें यहां से भेज रही हूं ना, अतः वो कदापि अपमान नहीं करेगा। यह कहकर उसने उसके हाथ में ढक्कन सहित एक स्वर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचक के घर की ओर चली। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो मनीमन भगवान सूर्य की शरण में गई। सूर्य ने उसकी देखरेख के लिए गुप्त रूप से एक राक्षस भेजा जो सब अवस्थाओं में साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा। द्रौपदी को इसका ज्ञान नहीं था। द्रौपदी भयभीत हुई हिरणी के समान डरते डरते उसके पास गई। उसे देखते ही वह आनंद में भरकर खड़ा हो गया और वो कीचक बोला, सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, मेरे लिए आज की रात का प्रभात बड़ा मंगलमय होगा। मेरी रानी तुम मेरे घर आ गई, अब तुम मुझे स्वीकार करो। द्रौपदी ने कड़क करके कहा, मुझे महारानी सुदेशना ने तुम्हारे पास यह कहकर भेजा है कि शीघ्र जाकर पीने योग्य रस ले आओ, प्यास सता रही है। कीचक ने कहा, कल्याणी उसकी मांगी हुई चीजें तो दूसरी दासियां अपने आप पहुंचा देंगी। यह कहकर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी ने आंखों के तेवर तेज करते हुए कहा, पापी यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अपने पतियों के विरुद्ध आचरण नहीं किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से देखूंगी कि तू शत्रु से पराजित होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हटी और वह उसे पकड़ना चाहता था। वह झटके देकर अपने को छुड़ाकर उद्योग कर रही थी कि कीचक ने सहसा झपटकर उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। बेचारी द्रौपदी बार बार लंबी सांसें लेने लगी। फिर वह संभल कर उसने कीचक को बड़े जोर से धक्का दिया जिससे वह पापी जड़ से कटे हुए वृक्ष के भांति धम से पृथ्वी पर जा गिरा। उसे गिराकर वह कांपती हुई दौड़ती हुई वहां से रवाना हुई और दौड़ी दौड़ी सीधी राजसभा की शरण में आई। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का बड़े तेजी से दौड़ते हुए पीछा किया और उसके केश पकड़ लिए। फिर राजा के सामने उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। इतने में सूर्य के द्वारा नियुक्त राक्षस ने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। वो राक्षस दिखाई भी नहीं दिया। कीचक का सारा शरीर कांप उठा और वो निस्तेज होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस सभा में युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे हुए थे। उन्होंने द्रौपदी का यह अपमान अपनी आंखों से देखा। ये अन्याय उनसे सहा नहीं गया। दोनों भाई क्रोध में भर गए। भीम तो उस दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से क्रोध के मारे दांत पीसने लगे। उनकी आंखों के सामने धुआं छा गया, भौहें टेढ़ी हो गई और ललाट से पसीना छूटने लगा। वे क्रोध में उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिर ने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से उसका अंगूठा दबाकर रोक दिया। इतने में द्रौपदी सभा भवन के द्वार पर आई और मत्स्यराज से सुनाकर कहने लगी, महाराज मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु वे धर्म के पास में बंधे हुए हैं। मैं उनकी सम्मानित धर्म पत्नी हूं, तो भी आज एक सूत पुत्र ने मुझे लात मारी है। हाय, जो शरणार्थियों को सहारा देने वाले हैं और इस जगत में गुप्त रूप से बिसरते रहते हैं, वे मेरे पति महारथी वीरराज कहां चले गए? अत्यंत बलवान और तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी इस प्रियतमा एवं पतिव्रता पत्नी का एक सूत के द्वारा अपमान कैसे देख रहे हैं, जैसे कोई कायरों के भांति बर्दाश्त करते हों। यहां का राजा विराट भी धर्म को दूषित करने वाला है। इसने एक निरपराध स्त्री को अपने सामने मार खाते देखकर भी सहन कर लिया। महाराज धर्म का विचार करो, भला इसके रहते हुए मैं अपने इस अपमान का बदला कैसे ले सकती हूं? यह राजा होकर भी कीचक के प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्यराज, ये लुटेरों का राज्य है, तुम्हारा ये लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा देता है? तुम्हारे निकट आकर भी कीचक के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता। सभासद लोग भी सूत पुत्र के इस अत्याचार पर विचार करें, वह स्वयं तो पापी है ही, इस मत्स्य नरेश को भी धर्म का ज्ञान नहीं है। साथ ही सभासद भी धर्म को नहीं जानते हैं, तभी तो धर्म को न जानने वाले इस राजा की सेवा में बैठे हैं। एक अबला के साथ इस प्रकार व्यवहार देखकर चुप रहना आपका कौन सा धर्म है? इस प्रकार आंखों में आंसू भरे हुए द्रौपदी ने बहुत सी बातें कहकर राजा विराट को उलाहना दिया। फिर सभासदों के पूछने पर उसने कलह का कारण बताया। इस रहस्य को जानकर सभी सदस्यों ने एक स्वर से द्रौपदी के उत्साह की प्रशंसा की और कीचक को बारंबार धिक्कारते हुए कहा, ये साध्वी जिस पुरुष की धर्म पत्नी है उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। मनुष्य जाति में ऐसी स्त्री मिलना बहुत कठिन है। हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। इस प्रकार जब सभासद लोग द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे, युधिष्ठिर ने उससे कहा, शैलेंद्री अब यहां खड़ी ना हो, रानी सुदेशना के महल में चली जाओ। तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देख रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं, परंतु तुम्हारे पति तुम्हारा अवश्य प्रिय कार्य करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। शैलेंद्री, धीरज सबसे बड़ा बल होता है, थोड़ा धीरज रखो। जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, तुम्हारे पति उसको छोड़ने वाले नहीं है, उसे नष्ट करके ही रहेंगे। द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी को देखा और युधिष्ठिर जी ने अपने इशारे से समझा दिया। द्रौपदी ने फिर अपने बाल यूं किए और द्रौपदी चली गई। रानी सुदेशना ने उसे रोते और आंसू बहाते देखकर पूछा, कल्याणी तुम्हें किसने मारा है, क्यों रो रही हो, किसके भाग्य से आज सुख समाप्त हो गया, जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है वो अब संसार में नहीं रहेगा। द्रौपदी ने कहा, आज दरबार में राजा के सामने कीचक ने मुझे लात मारी है और आपके महाराज चुपचाप ये दृश्य देख रहे हैं। सुदेशना बोली, सुंदरी कीचक ने लात मारी, कीचक काम से मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारी यदि राय हो तो मैं आज ही उसे राजाज्ञा से मरवा डालू। द्रौपदी ने कहा, नहीं रानी, आपसे मरवाने की बात मैं कभी नहीं कह सकती, यह तो जिनका अपराध कर रहा है वे गंधर्व अपने आप उसका बदला लेंगे और इसको यमलोक का रास्ता अवश्य दिखा देंगे। सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी तभी से यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके वध की बात सोचा करती थी। इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया। रात्रि में सब लोग सो रहे थे, उस समय वह उठकर बड़ी सावधानी से कोई देख न ले अपनी सैया से उठकर भीमसेन के भवन में गई। उस समय उसके मन में अपमान का बड़ा भारी दुख हो रहा था। पाकशाला में प्रवेश करते ही उसने कहा, भीमसेन उठो उठो, भीमसेन उठो, मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी तक जीवित है और आप लोग यहां निश्चिंत होकर सो रहे हो, शर्म नहीं आती? द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन अपने पलंग पर अंगड़ाई लेते हुए उठा और बैठा और बोला, प्रिय रात्रि में तुम क्यों आई, क्या आवश्यकता पड़ी, इतनी उतावली, इतनी व्यग्र, इतनी दुखी क्यों हो रही हो, क्या आफत आ गई? देखता हूं तुम्हारे शरीर का रंग अस्वाभाविक हो गया, तुम दुर्बल और उदास हो गई, क्या कारण है, पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। द्रौपदी ने कहा, मेरा दुख आपसे छिपा है, सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हो, क्या उस दिन की बात भूल गए जबकि प्रातिकामी मुझे दासी कहकर भरी सभा में घसीट ले गया था, उस अपमान की आग में मैं सदा ही जलती रहती हूं, संसार में मेरे सिवा दूसरी कोई राजकन्या है जो ऐसा दुख भोग पर भी जीवित है? वनवास के समय दुरात्मा जयद्रथ ने मेरा स्पर्श किया, वह मेरे लिए दूसरा अपमान नहीं था क्या? पर उसे भी मैंने सहा है, और अब की बार पुनः यहां के धूर्त राजा विराट की आंखों के सामने उस दिन कीचक द्वारा अपमानित हुई, भरी सभा में मुझे लात मारा। इस प्रकार बारंबार अपमान का दुख भोगने वाली मेरी जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है? ये तो मैं द्रौपदी ही हूं जो चाहने पर भी मौत को नहीं बुला पा रही हूं। ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूं और आप मेरी सुध भी नहीं लेते। क्या मेरे जीवन से, मेरे जीने से लाभ क्या हुआ? आपको पता नहीं है कीचक नाम का एक सेनापति जो नाते में राजा विराट का साला होता है बड़ा दुष्ट है। प्रतिदिन शैलेंद्र के वेश में मुझे राजमहल में देखकर कहता है तुम मेरी स्त्री हो जाओ। रोज रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते सुनते मेरा हृदय छलनी छलनी हो गया है। इधर धर्मात्मा युधिष्ठिर को जब अपनी जीविका के लिए दूसरे राजा की उपासना करते देखती हूं तो मन बड़ा दुखी होता है। क्या तो वो राजसु यज्ञ में ये ही विराट महाराज युधिष्ठिर के सामने एक नगण्य राजा के समान थे, और आज वे ही युधिष्ठिर यहां आजीविका चलाने के लिए इसके पास आए हैं। जब पाकशाला में भोजन तैयार होने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते हो और अपने को भीमसेन न कर बल्लव नामधारी रसोईया बनते हो, उस समय मेरे मन में कितनी वेदना होती है। और ये तरुण वीर अर्जुन जो अकेले ही रथ में बैठकर देवताओं और मनुष्यों पर विजय पा चुका है, आज विराट की कन्याओं को नपुंसक होकर नाच सिखा रहा है। धर्म में, शूरता में, सत्य भाषण में जो संपूर्ण जगत के लिए एक आदर्श था, उस अर्जुन को स्त्री के वेश में और नपुंसक की चाल चलते हुए मेरा हृदय कितना व्यथित हो रहा है। आपके छोटे भाई सहदेव को गौओं के साथ ग्वालों के रूप में ओछी ओछी धोती पहने हुए और कमर पर आधी बगलबंदी पहने हुए, मैली कुचेली बगलबंदी पहने हुए देखती हूं तो मेरा शरीर सूख सूख हो जाता है। मुझे याद है जब वन को आने लगी उस समय माता कुंती ने रोकर कहा था, पांचाली सहदेव मुझे बहुत प्यारा है, ये मधुर भाषी है, धर्मात्मा है, अपने सब भाइयों का आदर करने वाला है, परंतु बड़ा संकोची है, तुम अपने हाथ से भोजन कराना, इसे कोई कष्ट न हो पाए। क्या हम माता को जाकर यही कहेंगे कि सहदेव घोड़ा पालता है? ये कहते कहते उन्होंने सहदेव की छाती से लगा लिया था माने। आज देखती हूं रात दिन गऊओं की सेवा में जुटा है, रात को बछड़ों के चमड़े बिछाकर सोता है। ये सब देखकर भी मैं किस लिए जीवित हूं? कौन सा मेरा भविष्य उज्जवल होने वाला है? समय का फेर देखो, जो सुंदर रूप, अस्त्र विद्या और मेधा शक्ति तीनों में सदा संपन्न रहने वाला नकुल आज विराट के घर घोड़ों की सेवा करता है, उनकी सेवा में उपस्थित होकर घोड़ों की चाल दिखाता है। मैं सुदेशना के महल में बैठी बैठी दृश्य देखती हूं तो मैं अपने आंसुओं को चुपचाप सह लेती हूं। आप लोग आराम से सो रहे हैं, सो जाइए, विराट का खूब अन्न खाइए, पाकशाला में आराम से खर्रटे भरकर नींद लीजिए। रोने का काम तो मेरा है ना, मैं तो रोती रहूं, आप सोते रहो। राजस्व यज्ञ के अंदर बड़े बड़े राजा लोग मेरे दर्शन के लिए ललायित रहते थे कि इस राज रानी का दर्शन हो जाए। ये वही विराट है, यही सुदेशना है, ये दोनों वहां उपस्थित हुए थे। राज में इनके यहां नौकरानी बनकर बैठी हूं। पांडवों की महारानी और द्रुपद नरेश की पुत्री होकर आज मेरी ये दशा है। इस अवस्था में मेरे सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी? मेरे इस क्लेश से कौरव, पांडव तथा पांचाल वंश का अपमान हो रहा है। भीमसेन, उस अपमान की अग्नि में जली हुई आपके पास आई हूं। तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोग्य अवस्था में पड़ी हूं। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, आज वही द्रौपदी सुदेशना के अधीन है, भय से डर रही है, उसके भाई से लात खा रही है, उसकी चोटी पकड़ी जा रही है और उसका पति सारी पृथ्वी पर अपूर्व योद्धा होकर उससे पूछता है कि तुम रात में क्यों मुरझाती हुई चेहरे से आई हो? इसके सिवा कोई असह्य दुख होता है? पहले मैं माता कुंती को छोड़कर किसी के लिए, स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, परंतु अब राजा के लिए चंदन घिसना पड़ता है। देखो मेरे हाथ में गट्टे पड़ गए। पहले कभी मेरे ऐसे हाथ देखे? भीमसेन को अपने हाथ दिखाए। सिसकती हुई आवाज में बोली, न जाने देवताओं का मैंने कौन सा अपराध किया है, इतने में भी मेरी मौत नहीं आती है। भीम ने उसके पतले पतले हाथों को पकड़कर देखा, सचमुच काले काले दाग पड़ गए हैं। उन हाथों को अपने मुख पर लगाकर वे रो पड़े। भीमसेन के आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर आंतरिक क्लेश से पीड़ित होकर भीमसेन के लिए, कृष्णे, इस भीमसेन के बाहुबल को धिक्कार है अर्जुन के गांडीव धनुष को, जो तुम्हारे लाल लाल कोमल हाथ आज काले पड़ गए। उस दिन सभा में मैं विराट का सर्वनाश कर डालता अथवा ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हुए कीचक का मस्तक पैरों से कुचल डालता, किंतु धर्मराज ने मुझे अपने पैरों के अंगूठे से जोर से दबाकर संकेत दिया, मैं रुक गया। और उन्होंने कनखियों से देखकर मुझे मना भी कर दिया, आंख से मना कर दिया। इसी प्रकार राज्य से च्युत होने पर भी जो कौरवों का वध नहीं किया गया, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का सिर नहीं काट दिया गया, उसके कारण आज भी मेरा शरीर क्रोध से जलता रहता है। ये हमने भूल क्यों की? क्यों हमने उनको जिंदा छोड़ा? ये भूल अब भी हृदय में कांटे की तरह कसकती है सुंदरी। परंतु द्रौपदी, तुम अपना धर्म मत छोड़ो, बुद्धिमती हो, क्रोध और प्रतिशोध को दबाओ। पूर्व काल में बहुत सी स्त्रियों ने पति के साथ कष्ट उठाया है। भृगुवंशी च्यवन मुनि जब तपस्या कर रहे थे, उस समय उनके शरीर पर दीमक की बांबी जम गई। उनकी स्त्री हुई राजकुमारी सुकन्या, उसने उनकी बड़ी सेवा की। राजा जनक की पुत्री सीता का नाम तो तुमने खूब सुना होगा ना? वह घोर वन में पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा करती थी। एक दिन उसे राक्षस हरकर लंका में ले गया, तरह तरह के कष्ट देने लगा, तो भी उसका मन श्री रामचंद्र जी में ही लगा रहा और अंत में वह उन्हीं को ही प्राप्त हुई। इसी प्रकार लोपा मुद्रा नाम की एक स्त्री ने सांसारिक सुखों का त्याग करके अगस्त्य मुनि का अनुगमन किया। और द्रौपदी, तुमने सावित्री का नाम तो सुना होगा ना? अपने पति के पीछे यमलोक तक चली गई। इन रूपवती पतिव्रता स्त्रियों का जैसा महत्व तो बताया गया है उसमें तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारे में भी सभी सद्गुण हैं। कल्याणी, अब तुम्हें अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वर्ष पूरा होने में सिर्फ 1.5 माह रह गया है। 13वां वर्ष पूरा होते ही द्रौपदी शैलेंद्री नहीं महारानी राजरानी होगी। द्रौपदी बोली, नाथ इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है, इसलिए आर्त होकर मैंने आंसू बहाए हैं, उलाना नहीं दे रही हूं। अब इस समय जो कार्य उपस्थित है उसके लिए आप तैयार हो जाओ और आने वाले युद्ध का श्री गणेश कर शंखनाद बजाओ। क्या कहना चाहती हो द्रौपदी? मैं ये कहती हूं, पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। एक दिन मैंने उससे कहा, कीचक तू काम से मोहित होकर मृत्यु के मुख में जाना छोड़ दे, अपनी रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की रानी हूं, वे बड़े शूरवीर हैं और साहस से काम लेने वाले हैं, तुझे अवश्य मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उसने कहा, ए शैलेंद्री, तुम मुझे गंधर्वों का डर मत दिखाओ। संग्राम में यदि 1,00,000 गंधर्व भी आवे तो मैं उनका संहार कर डालूंगा। तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं कीचक हूं, कीचक, तुम मुझे स्वीकार करो। एक शैलेंद्री पद पर होकर इतने बड़े सेनापति का अपमान करने का दुस्साहस मत करो, ऐसे बोलता है। इसके बाद उसने रानी सुदेशना से मिलकर उसे कुछ सिखा भी दिया। द्रौपदी कह रही है, सुदेशना अपने भाई के प्रेमवश मुझसे कहने लगी, कल्याणी तुम कीचक के घर जाकर मेरे लिए मदिरा लाओ। मैं गई, पहले तो उसने अपने मन की बात लेने के लिए मुझे समझाया, अपनी बात मनाने के लिए समझाया, किंतु जब मैंने कठोरता से उसको ठुकरा दिया तो कपित कुपित होकर वो मेरे हाथ पकड़कर मुझे अपने भुजाओं में लेना चाहता था। उसका दुष्ट मनोभाव मुझसे छिपा नहीं रहा, इसलिए बड़े वेग से भागकर मैं राजा की शरण में गई। वहां भी पहुंचकर उसने राजा के सामने मेरा स्पर्श किया और पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। कीचक राजा का सारथी है, राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत मानते हैं, परंतु वह कितना पापी है, कितना क्रूर है। प्रजा रोती चिल्लाती रह जाती है और वह उसका धन लूट लाता है। सदाचार और धर्म के नाम पर वह कभी नहीं चलता। उसका भाव मेरे प्रति बहुत खराब हो चुका है। जब मुझे देखेगा गंदे प्रस्ताव रखेगा और ठुकराने पर वो कभी मुझे मार भी सकता है या मरवा भी सकता है। इसलिए अब मैं अपना प्राण देना उचित समझती हूं। वनवास का समय पूरा होने तक यदि चुप रहोगे तो इस बीच में पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। क्षत्रिय का सबसे मुख्य धर्म है शत्रु का नाश करना, परंतु धर्मराज के और तुम्हारे देखते देखते कीचक ने मुझे लात मारी और तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा। तुमने जटासुर से मेरी रक्षा की, मुझे हरकर ले जाने वाले जयद्रथ को भी पराजित किया, अब इस पापी को भी मार डालो, ये बराबर मेरा अपमान करता है। यदि ये सूर्योदय तक जीवित रह गया तो मैं विष घोलकर पी जाऊंगी। भीमसेन, इस पृथ्वी पर या तो कीचक रहेगा या द्रौपदी रहेगी। इस कीचक के अधीन होने देख मेरे सामने प्राण देना अच्छा समझती हूं। इतना कहकर द्रौपदी भीमसेन के वक्ष पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अब तो भीमसेन का भी हृदय क्रोध से उफनने लगा। उसे हृदय से लगाकर आश्वासन दिया, द्रौपदी तुम्हारे आंसुओं का बहुत मूल्य है, इसलिए इन आंसुओं को अब मत बहाओ। कीचक के प्रति कुपित होकर कहा, कल्याणी तुमने कहा वही होगा, कीचक कल का सूर्य नहीं देख सकता। अपना दुख और शोक दूर कर तुम आज सायंकाल में उसके साथ मिलने का संकेत कर दो। ये रात की बात हो रही है ना, तो मतलब कल के लिए है। तो कल का मतलब है कि कल का मतलब परसों का सूर्य नहीं देख सकेगा। आज सायंकाल में उसके साथ मिलने का संकेत कर दो। राजा विराट ने जो नई नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन में तो कन्याएं नाचना सीखती हैं परंतु रात में अपने घर चली जाती हैं। वहां एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो कि जिससे कीचक वहां आ जाए। बस अब मैं जानूं और कीचक जाने। इस प्रकार बातचीत करके दोनों ने शेष रात्रि बड़ी विकलता से व्यतीत की और अपने उग्र संकल्प को मन ही मन में छिपाए रखा। सवेरा होने पर कीचक पुनः राजमहल में आया और द्रौपदी से कहने लगा, सैरेंद्री, सभा में राजा के सामने भी मैंने तुम्हें गिराकर लात लगाई, देखा ना मेरा प्रभाव। तुम कहते हो मेरे गंधर्व पति, कहां गए तुम्हारे गंधर्व पति? अब तुम मुझ जैसे बलवान वीरों के हाथ में पड़ चुकी हो सैरेंद्री, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। विराट तो कहने मात्र के लिए मत्स्य देश का राजा है, वास्तव में तो मैं ही यहां का सेनापति और स्वामी हूं। राजा एक शब्द भी बोले, मेरे सामने राजा की बोलने की हिम्मत नहीं है। सैरेंद्री, भलाई इसी में ही है, तुम समय के प्रवाह के साथ बह जाओ और खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो। सैरेंद्री, सेनापति होकर मैं सैरेंद्री का दास होने जा रहा हूं, तुम इसको समझती नहीं? द्रौपदी ने बड़े मीठे शब्दों से कहा, कीचक, यदि ऐसी बात है तो एक मेरी शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी नहीं जानने पाए। कीचक ने कहा, वाह सैरेंद्री, ये बात तुमने हमको पहले क्यों नहीं बता दिया? कितनी बढ़िया बात है, मैं तुम्हारा दास हूं, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही करूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। द्रौपदी बोली, कीचक, राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वो रात में सुनी रहती है, अंधेरा है, तुम वहां आ जाना। अब कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी का आधा दिन भी एक महीने के समान भारी मालूम हुआ। तत्पश्चात वह दर्प में भरा हुआ अपने घर में गया। उस मूर्ख को ये पता नहीं था कि सैरेंद्र के रूप में ये मेरी मौत है। उधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, हे परंतप, तुम्हारी कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। वह रात्रि के समय सूने घर में अकेला आएगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालना। भीमसेन ने कहा, मैं धर्म सत्य तथा भाइयों की सौगंध खाके कहता हूं। वाह भीमसेन, खुश कर दिया उसने। मैं धर्म सत्य और भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूं कि इंद्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर को मार डाला उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग उसकी सहायता में आएंगे, एक एक कुछ चुन लूंगा, उसके बाद दुर्योधन का नंबर आएगा, दुर्योधन को मारकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा। द्रौपदी बोली, नाथ, मुझे जो वचन दिया है इस सत्य का पालन करना, अपने को छिपाए भी रखना और आज रात की चकुमार डालना। भीरू, भीमसेन यूं ही नहीं बोल रहा है, तुम जो कुछ कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नष्ट कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन अगली घटनाओं को बड़ी सावधानी से सुनो। उसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ गया और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे सिंह मृग की घात में बैठा रहता है, उसी प्रकार भीमसेन बैठे रहे। इस समय पांचाली के साथ मिलन करने की आशा से कीचक भी मनमानी तरह से सज धज कर नृत्यशाला में आया। वह संकेत स्थान समझकर नृत्यशाला के भीतर चला गया। उस समय वह सब भवन सब ओर से अंधकार से व्याप्त था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही मौजूद थे और एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। दुर्मति कीचक वहां पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। द्रौपदी के अपमान के कारण भीम इस समय क्रोध से जल रहे थे। काम से मोहित कीचक ने उनके पास पहुंचकर हर्ष से उन्मत्त चित्त होकर मुस्कुराते हुए कहा, कीचक ने, ए सुभ्रू, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब तुम्हें भेंट करता हूं, तथा मेरा जो धन रत्नादि से संपन्न सैकड़ों दासियों से सेवित रूप लावण्यमयी रमणी रत्नों से विभूषित और क्रीड़ा एवं रति की सामग्रियों से सुशोभित भवन है, वह भी तुम्हारे लिए न्योछावर करता हूं। और उन सबको न्योछावर करने के बाद ही अब तुमसे मिलने आया हूं। मेरे अंतःपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं कि आपके समान सुंदर वेश से सुसज्जित दर्शनी कोई दूसरा पुरुष नहीं है। मैं उनसे सम्मानित होकर आया हूं। भीमसेन ने कहा, आप दर्शनीय हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा ना। ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए और उससे हंसकर कहने लगे, रे पापी, तू पर्वत के समान बड़े डील डोल वाला है, किंतु सिंह जैसे विशाल गजराज को घसीटता है, उसी प्रकार आज मैं तुझे पृथ्वी पर मसल दूंगा और तेरी बहन ये सब देखेगी। इस प्रकार जब तू मर जाएगा तो शैलेंद्री बेखटके विचरेगी तथा उसके पति भी आनंद से अपने दिन बिताएंगे। तब महाबली भीम ने उसके पुष्प गुम्फित केश पकड़ लिए। कीचक भी बड़ा बलवान था, उसने अपने केश छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। फिर क्या था, उन दोनों में परस्पर बाहु युद्ध होने लगा। दोनों बड़े वीर, उनकी भुजाओं की रगड़ से बांस फटने की कड़क 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 आवाज आने लगी। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झंझोड़ लेती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। महाबली कीचक ने भी अपने घुटनों की चोट से भीमसेन को भूमि पर गिराया। तब भीमसेन दंडपाणी यमराज के समान बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान, इस समय स्पर्धा के कारण वे दोनों ही उन्मत्त थे। रात्रि की समय कोई दूसरा तो था नहीं, इसलिए दोनों ही हुंकार की बड़ी बड़ी आवाजें करने लगे, एक दूसरे को रगड़ने लगे, क्रोध में भरकर भीषण गर्जना करने लगे। इससे वे भवन बार बार गूंज उठता था। अंत में भीमसेन ने क्रोध में भरकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे धक्का देकर इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया जैसे रस्सी से पशु को बांध देते हैं। जब कीचक फूटे हुए नगारे के समान जोर जोर से डकारने लगा, करने लगा और उसकी भुजाओं से छूटने के लिए छटपटाने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्णा के कोप को शांत करने के लिए उसे घोटने लगे। उसके सारे अंग चूर चूर हो गए, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर निकली आई, तो उन्होंने उसके पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिए और उसे अपनी भुजाओं में मरोड़कर पशु के भांति मार डाला। कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ पैर सिर गर्दन आदि अंगों को पिंड के भीतर ही घुसा दिया। सिर को अंदर, हाथ को भी अंदर, पैरों को भी अंदर, शरीर के अंदर घुसा दिया। इस प्रकार उसके सब अंगों को तोड़ मरोड़ कर एक मांस का लोदा बना दिया और द्रौपदी को दिखाकर कहा, पांचाली जरा यहां कर देखो तो इस कान के कीड़े की गति बनाई, तो इस कान के कीड़े की क्या गति बनाई है, आओ देखो इसको, कान का कीड़ा है। ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचक के पिंड को पैरों से ठुकराया और द्रौपदी से कहा, भीरू जो कोई तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा वह ऐसे ही मारा जाएगा और उसकी ऐसी दुर्गति होगी। द्रौपदी प्रसन्न हो गई। द्रौपदी की प्रसन्नता के लिए ही भीम ने काम किया। फिर जब भीमसेन का क्रोध ठंडा पड़ गया तब वे द्रौपदी से पूछकर पाकशाला में गए। कीचक का वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई, उसका सारा संताप शांत हो गया। फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वालों से कहा, देखो ये कीचक पड़ा हुआ है, मेरे पति गंधर्वों ने उसकी ये गति की है, तुम लोग वहां जाकर देख के तो आओ क्या दशा हुई है। द्रौपदी की बात सुनकर नाट्यशाला के सहस्रों चौकीदार मशाले लेकर वहां आए। फिर उन्होंने उसे खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में पृथ्वी पड़े देखा। उसे बिना हाथ पांव का देखकर सबको बड़ी व्यथा हुई, उसे इस स्थिति में देखकर सबको बड़ा आश्चर्य भी हुआ। उसी समय कीचक के सब बंधु बांधव भी वहां एकत्रित हो गए, उसे चारों ओर से घेर कर बड़ा विलाप करने लगे, जोर जोर से रोने लगे, हे वीरवर कीचक, तुमने हमको क्यों नहीं बुलाया, उन गंधर्वों से हम लड़ लेते। ऐसी दुर्गति देखकर सबके रोंगटे भी खड़े हो गए, उसके सारे अवयव शरीर में घुसा दिए, ऐसा तो आज पहली बार देखा है, ये तो कछुए की सी दशा कर दी। फिर उसके सगे संबंधी उसका दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाश से थोड़ी ही दूर पर एक खंभे का सहारा लिए खड़ी हुई द्रौपदी पर पड़ी। सब लोग इकट्ठे हो गए तो उन कीचक के भाइयों ने कहा, अरे इस द्रौपदी के कारण से दशा हुई है, इस शैलेंद्र के कारण से दशा हुई है, इस दुष्टा को अभी मार डालना चाहिए, इसी के कारण कीचक की हत्या हुई, अथवा मारने की भी क्या आवश्यकता थी, कामासक्त कीचक के साथ भी इसे ही जला दो। ऐसा करने से मर जाने पर भी सूत पुत्र का प्रिय कार्य हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा, महाराज कीचक की मृत्यु सैरेंद्र के कारण से हुई है, अतः हम इसे कीचक के साथ जला देना चाहते हैं। कीचक का भी इसमें मन था और सैरेंद्र इसके साथ जल जाए, अपराध क्या है, आज्ञा दीजिए। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम की ओर देखकर सैरेंद्र को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी। कितना अन्याय है देखो। बस अब उपकीचकों ने अर्थात कीचक के भाइयों ने भय से अचेत हुई कमल नयनी कृष्णा को पकड़ लिया और उसे कीचक की रथी पर डालकर बांध दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघट की ओर चले। कृष्णा सनाथा होने पर भी सूत पुत्रों के चंगुल में पड़कर अनाथ की तरह विलाप करने लगी। सहायता के लिए चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, जय जयंत, विजय जयतसेन, जयतबल, मेरी टेर सुनो, ये सूत पुत्र मुझे ले जाए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुष की प्रत्यंचा का भीषण शब्द संग्राम भूमि में वज्राघात के समान सुनाई देता था और जिनके रथों का घोष बड़ा ही प्रबल था, वे मेरी पुकार सुने, ये सूत पुत्र मुझे ले जा रहे हैं। कृष्णा की दीन वाणी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किए अपने शैया से खड़े हो गए और कहने लगे, सैरेंद्री तू जो कुछ कह रही है वो हम सुन रहे हैं, इसलिए इन सूत पुत्रों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वे नगर का परकोटा लांघकर बाहर गए और श्मशान में जहां ले जाने की तैयारी थी वहां पर भीमसेन पहुंच गए। जब तक वो सूत पुत्र पहुंचे ही नहीं थे उससे पहले ही पहुंच गए। चिता के समीप उन्हें ताड़ के समान एक 10 व्याम लंबा वृक्ष दिखाई दिया। व्याम माने ये एक व्याम है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 व्याम विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उसे भीमसेन ने भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर से धक्का लगाकर उखाड़ लिया और उसे कंधे पर रख लिया। दंडपाणी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले। उस समय उनकी जंघाओं से टकरा टकरा कर अनेकों बड़ पीपल ढाक के वृक्ष साफ गिर गए, दौड़ रहे थे। भीमसेन ने एक काम और किया, वहां तालाब था, तालाब के अंदर वो डाकर के 100 कीचड़ यूं लगा लिए थे, फिर वृक्ष लेकर जा रहे कोई पहचान नहीं पाए। भीमसेन की सिंह के समान क्रोध भरी आवाज को सुनकर सूत पुत्र डर गए और भय के विषाद से कांपने लगे। अरे देखो ये बलवान गंधर्व वृक्ष उखाड़कर बड़े क्रोध से हमारी ओर आ रहा है, छोड़ दो छोड़ दो, सैरेंद्र को छोड़ दो, इसी के कारण बड़ा भय हुआ है। अब तो भीमसेन वृक्ष को उठाए देखकर सबके सब सैरेंद्र को छोड़कर नगर के बाहर नगर की ओर भागने लगे। उन्हें भागते देख पवन नंदन भीमसेन ने इंद्र जैसे दानों का वध करते हैं उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। 105 थे वो। उसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ाकर ढाढ़स दिया। द्रौपदी के नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी। वो बड़ी दीन थी। द्रौपदी ने कहा कि भीमसेन ये हमारे पर ही आफत क्यों आ रही है। भीमसेन ने कहा, कृष्णे प्रारब्ध प्रबल होता है, तेरा कोई अपराध न होने पर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। अब तू नगर की ओर चली जा, अब तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। मैं दूसरे रास्ते से राजा के विराट के रसोई घर की ओर जाऊंगा। इधर नगरवासियों ने सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज, गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला है और शैलेन्द्री उनके हाथ से छूटकर राजभवन की ओर आ रही है। उनकी बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सूत पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करें, बहुत से सुगंधित पदार्थ और रत्नों के साथ सब कीचकों को एक ही प्रज्वलित चिता में जला दें, फिर कीचकों के वध से भयभीत हो जाने के कारण उन्होंने महारानी सुदेशना के पास जाकर कहा। राजा ने जाकर कहा, जब शैलेन्द्री यहां आवे तो तुम मेरी ओर से उसे ये कह देना कि हे सुमुखी शैलेन्द्री, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ, महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं, हम लोग अब गंधर्वों से डर गए हैं। राजन, जन्मेजय जब मनस्विनी द्रौपदी सिंह से डरी हुई निगी के समान अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर नगर में आई तो उसे देखकर पूर्वासी लोग गंधर्वों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे तथा किनी किनी ने नेत्र मूंद लिए। किनी किनी का, शैलेन्द्र जी गंधर्वों को कुछ मत कहना, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाला में अर्जुन से मिली, जो उन दिनों राजा विराट की कन्या को नाचना सिखाते थे। उन्होंने कहा, शैलेन्द्री तू उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे कैसे मारे गए? ये सब बातें मेरे मुख से ज्यों की तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूं। सबके बीच में पूछा उसने, शैलेन्द्री तू इन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और कैसे मारे गए? ये सब बातें तेरे मुख से मैं ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूं। अर्जुन बोल रहा है, हट कुत्ता न भगाओ, कुत्तो बिल्ली ने तंग कर। अब वो अर्जुन तो ऐसे ही बोलेगा नपुंसक है। शैलेन्द्री ने कहा, वृहन्न ले अब तुम्हें शैलेन्द्री से क्या काम है, क्योंकि तुम तो मौज में इन कन्याओं के अंतपुर में रहती हो। आजकल शैलेन्द्री पर जो जो दुख पड़ रहे हैं उनसे तुम्हें क्या मतलब है, तुम तो नाचो गाओ और इनके साथ रहो। इसी से मेरी हंसी करने के लिए तुम इस प्रकार पूछ रही हो, मेरी हंसी करने के लिए? वृहन्नला ने कहा, कल्याणी इस नपुंसक योनि में पड़कर वृहन्नला भी जो महान दुख पा रही है उसे तुम क्या समझोगी? मैं तेरे साथ रही हूं और तू भी हम सब के साथ रहती है, भला तेरे पर जो दुख आए उस दुख को हम कैसे भूल सकते हैं? तेरा दुख हमारा ही तो दुख है ना। इसके पश्चात कन्याओं के साथ द्रौपदी राजभवन में गई, रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदेशना ने राजा विराट के कथनानुसार उससे कहा, भद्रे महाराज को गंधर्वों से तिरस्कृत होने का बड़ा भय है, उनके मन में ऐसा आ रहा है कि शैलेन्द्री के पति कहीं हमारे राज्य को उखाड़ कर न फेंक दें। तू तरुणी भी है, तू रूपवती भी है, संसार में तेरे समान कोई रूपवती दिखाई नहीं देती है। पुरुषों को विषय तो स्वभाव से प्रिय होता है और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, अतः राजा की ये आज्ञा है कि तेरी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। शैलेंद्र ने कहा, महारानी जी 13 दिन के लिए आप मुझे और क्षमा करें, इसके पश्चात गंधर्वगण मुझे अपने आप ले जाएंगे और आपका हित भी करेंगे। केवल 13 दिन की बात है। उनके द्वारा महाराज का, उनके भाई बंधुओं का, आप सभी का बड़ा भारी हित होगा। इस शैलेंद्र के वचनों को याद रखना। केवल 13 दिन मांगती हूं।